राधिका के पास सुबह सुबह वकील का कॉल आया था, जिसने उसे बताया कि सिंघानिया मेंशन को केशव सिंघानिया ने खरीद लिया है। केशव का अचानक इस तरह उसके पीछे आना और फिर सिंघानिया हाउस को खरीदना आम नहीं था। राधिका इस बारे में इशिका से बात करना चाहती थी। वो इशिका के उठने का इंतजार कर रही थी। सुबह लगभग 9 बजे के करीब इशिका और अभिमन्यु तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकले। राधिका उनसे बात करने के लिए जा ही रही थी कि तभी वहां पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ आए। इशिका और अभिमन्यु को इसी वक्त पुलिस स्टेशन चलने की बात कही गई। इंस्पेक्टर को सुबह सुबह वहां देखकर और ऊपर से पुलिस स्टेशन जाने की बात सुनकर अभिमन्यु, इशिका और राधिका तीनों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। राधिका ने इंस्पेक्टर माधव से पूछा, आशीष दास का केस क्लोज हो गया था और माहिर को अरेस्ट भी कर लिया गया था, फिर आप इशिका और अभिमन्यु को पुलिस स्टेशन क्यों ले जाना चाहते हैं? क्या मालविका ने कुछ नहीं किया? मालविका के खिलाफ रिपोर्ट उन दोनों ने ही की थी, तो एक पल के लिए राधिका को लगा कि जरूर वो मालविका के लिए वहां आए होंगे। अभिमन्यु ने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में पूछा, आई होप इंस्पेक्टर सब ठीक है। मिस्टर राजवंश, अगर सब ठीक होता तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें मिस आयशा सिंघानिया की लाश मिली है। उनके पागलखाने से भागने के बाद से ही हम उन्हें ढूंढ रहे थे। सुबह एक सफाई वाले ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। उनकी डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिली है, इंस्पेक्टर ने बताया। आयशा की लाश मिलने की खबर उनके लिए किसी झटके से कम नहीं थी। वे सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या ये सब कैसे हुआ इंस्पेक्टर? राधिका ने जल्दी से कहा। वे सब आयशा से कितनी भी नफरत क्यों ना करें, लेकिन उसकी इतनी बुरी नियति नहीं चाहते थे। इशिका और राधिका के चेहरे पर हल्के मायूसी के भाव थे, तो वहीं अभिमन्यु को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा, हमारा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है इंस्पेक्टर, आप गलत जगह पर आए हैं। उसका एक्स हस्बैंड नक्श राजवंश है, तो आप जाकर उससे पूछताछ कीजिए, क्या पता दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हो। अभिमन्यु बिल्कुल ठीक कह रहा है, उल्टा हमने तो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी। हम इस मामले में आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, राधिका ने अभिमन्यु का साथ देते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर लेना देना नहीं होता तो मैं इतनी सुबह यहाँ राजवंश हाउस नहीं आता। क्या मैं जान सकता हूँ कि कल रात आप कहाँ थे? हम लोग कल रात डिनर के लिए रेस्टोरेंट हेवन में गए थे, इशिका ने धीमी आवाज में कहा। इसी वजह से मैं आपके पास आया हूँ। आयशा की डेड बॉडी वहीं पर मिली है और उसकी मौत का वक्त भी लगभग उसी समय का है जब आप लोग वहां से निकले थे। मैंने होटल की सीसीटीवी फुटेज में देखा है, माधव ने बताया। उसकी बातें सुनकर अभिमन्यु की गुस्से में मुठ्ठियां कस गई थीं। वो सर्द आवाज में बोला, तो आपको ये लगता है कि उस लड़की को हमने मारा है? इंस्पेक्टर, बोलने से पहले सोच लीजिएगा कि आप किस पर उंगली उठा रहे हैं। मैं आपकी पावर और पोजीशन से अच्छी तरह वाकिफ हूँ मिस्टर राजवंश, सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं बस पूछताछ करना चाहता हूँ, माधव ने काफी नर्म लहजे में कहा। पिछली बार उसने खुद देखा था जब इशिका को बचाने के लिए अभिमन्यु ने पूरे डिटेंशन सेंटर को सिर पर उठा लिया था। उसने तो माधव को गन पॉइंट पर तक ले लिया था। कोई कुछ कहता उससे पहले अभिमन्यु ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, हम दोनों ही आपके साथ नहीं आ पाएंगे। आपको कुछ पूछना है तो आप यहीं पूछ सकते हैं। मिस्टर राजवंश अब आपको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मुझे कोई सख्त कदम उठाने पर मजबूर मत कीजिए, माधव बोला। आप जिस सख्त कदम उठाने की बात कर रहे हैं वो मैं भी उठा सकता हूँ और मैंने ऐसा किया, तो यकीन मानिए आपको पैकिंग तक करने का टाइम नहीं मिलेगा। रही बात कोऑपरेट करने की, तो मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं और मेरी वाइफ कहीं नहीं जाएंगे। फिर भी आपको जबरदस्ती करनी है तो मैं लॉयर को कॉल कर देता हूँ, अभिमन्यु ने धमकी भरे अंदाज में कहा। लेकिन अभिमन्यु, इशिका अभिमन्यु को समझाना चाहती थी। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अभिमन्यु ने उसे चुप रहने का इशारा किया। माधव के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे और वो इस तरह शक के आधार पर इतने बड़े आदमी को उठाकर जेल में नहीं डाल सकता था। आखिर में माधव को अपने हथियार गालने ही पड़े। उसने बोला, ठीक है नहीं बैठकर बात कर लेते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए तो आपको डेड बॉडी ले जानी पड़ेगी, उसका कोई नहीं है। उसका कोई नहीं है तो मैंने यहाँ चैरिटी नहीं खोल रखी है कि हर लावारिस लोगों का अंतिम संस्कार करवाऊं। जाकर नक्श राजवंश से बात कीजिए, अगर वो इनकार करता है तो आप उसका क्रिमिनेशन पुलिस स्टेशन के रूल्स के हिसाब से करवा सकते हैं, अभिमन्यु ने जवाब दिया। वे लोग लिविंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे। एक बार के लिए भले ही कोई आयशा के कर्मों के लिए उसे माफ कर दे, लेकिन अभिमन्यु भूलने वाला नहीं था, उसने जो भी किया था। कुछ ही मिनटों में अभिमन्यु और इशिका इंस्पेक्टर माधव के साथ लिविंग रूम में बैठे थे। इशिका ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और उसे आंखों ही आंखों में शांत रहने को कहा। अभिमन्यु ने इशिका के इशारे को समझते हुए ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं मैं शांत नहीं रह सकता, उस लड़की ने जीते जी कभी हमें सुकून से नहीं रहने दिया, आज जब वो इस दुनिया से जा चुकी है तब भी हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रही है? हमने कुछ नहीं किया है और ना ही हमारा इस मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो शांत रहकर सवालों के जवाब देते हैं, इशिका ने उसे समझाया और फिर माधव की तरफ देखकर कहा। वैसे आयशा का दुश्मन कौन हो सकता है जो उसे मारना चाहता होगा? माधव ने सिर हिलाकर कहा। वो तो हम पता लगा लेंगे, मेरा यहाँ आने का सीधा सीधा कारण यही है कि आयशा की आखिरी लोकेशन आपसे मिलती है, शायद वो आपका पीछा कर रही थी, या हो सकता है कि
माधव क्या कहने वाला था ये समझते हुए अभिमन्यु उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है कि हम उसे मारने का सोचें, क्योंकि हमारे पास इतना फ्री टाइम नहीं है। आप सब अच्छे से जानते हैं कि वो इशिका के पीछे क्यों आई होगी। वो हमारा पीछा कर रही थी, खतरा हमारी जान को था, और आप हमसे ही सवाल जवाब कर रहे हैं स्ट्रेंज इंस्पेक्टर। पुलिस का काम है हर पॉसिबिलिटीज पर काम करना, बस हम वही कर रहे हैं। क्या आप एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं जब आप उस रेस्टोरेंट से बाहर निकले थे? आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वहां मौजूद लोगों से पता चला कि आप रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के काफी देर बाद भी उस एरिया में थे, माधव ने पूछा। मुझे आइसक्रीम खानी थी, इस वजह से हम वहां बाहर खड़े आइसक्रीम ट्रक के पास थे। आप चाहो तो उनसे अपना स्टेटमेंट ले सकते हो। आइसक्रीम खाने के बाद हमने थोड़ी देर वहां बिताई और फिर गाड़ी में बैठकर चले गए थे, इशिका ने जवाब दिया। क्या आपके और आपके गार्ड्स के अलावा कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो आपकी बातों की गवाही दे सके? माधव ने बोहे चढ़ाकर पूछा। आयशा इशिका और अभिमन्यु के पूरी देर तक पीछे थी। इससे पहले कि माधव आगे कुछ बोलता, उसके पास एक कॉल आया। ये क्रिस्टल का कॉल था। जब से उसे पता चला था कि माधव इशिका और अभिमन्यु पर शक कर रहे हैं, तो वो सबूत ढूंढने में लग गई थी। क्रिस्टल ने माधव का कॉल उठाते ही कहा, मैंने कहा था ना, आप बेवजह उन पर शक कर रहे हैं इंस्पेक्टर। डॉक्टर डिसूजा, आप अपनी दोस्ती के चलते एक बार फिर मेरे काम में टांग अड़ा रही हैं। आपका काम फोरेंसिक डिपार्टमेंट में है, सबूत ढूंढने और छानबीन करने का काम हमारा है। बेहतर है कि आप हमारे काम के बीच में ना आए, माधव ने हल्के गुस्से में कहा। वो जानता था कि मामला इशिका और अभिमन्यु से जुड़ा हुआ था, तो क्रिस्टल जरूर दखलअंदाजी करेगी।
क्रिस्टल ने गहरी सांस ली और अपनी बात समझाते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आपका काम क्या है और मेरा क्या, लेकिन अगर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो इसमें हर्जी क्या है? मुझे सबूत मिल गए हैं। एक रिपोर्टर वहां मौजूद थी जो अभिमन्यु का इंटरव्यू लेना चाहती थी। उन्होंने खुद उन्हें वहां से जाते हुए देखा था। वो गवाही देने के लिए तैयार है, और आप अच्छे से जानते हो मैं कभी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करती हूँ। क्रिस्टल की बातों के चलते माधव मजबूर हो गए थे। उन्होंने उसकी बात मान ली और कॉल काट दिया। क्रिस्टल से बात करने के बाद माधव ने अभिमन्यु और इशिका की तरफ देखकर रूखे अंदाज में कहा, मिस्टर एंड मिसेज राजवंश, आपकी किस्मत अच्छी है कि डॉक्टर डिसूजा आपकी दोस्त हैं। वो ईमानदार हैं तो कभी झूठे सबूत पेश नहीं करेगी। उन्हें आपकी बेगुनाही का सुकून मिल गया है। अगर उसे सबूत नहीं भी मिलता तो मैं साबित कर देता। मेरी गाड़ी में डैश कैम लगे हुए हैं, उसकी फुटेज देखकर आपको हमारी बात पर यकीन करना ही पड़ेगा, अभिमन्यु ने जवाब दिया। जब अभिमन्यु ने अपनी गाड़ी में कैमरा लगे होने की बात कही तो माधव ने जल्दी से कहा, क्या मैं उसकी फुटेज देख सकता हूँ? मुझे जानना है कि उस रात आयशा के साथ क्या हुआ था। ठीक है, मैं पृथ्वी को बोलता हूँ, वो आपको फुटेज भेज देगा। उम्मीद है कि अगली बार बिना अपॉइंटमेंट के आप घर पर नहीं आएंगे। आपकी इस पूछताछ के चलते हमारा काफी टाइम वेस्ट हुआ है, अभिमन्यु ने सख्त अंदाज में कहा। माधव ने अपनी हलती पर उसे सॉरी कहा और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही इशिका ने तुरंत ही अभिमन्यु से परेशान स्वर में कहा, मुझे उसकी डेड बॉडी देखने जाना है। उसे किसने मारा होगा अभिमन्यु? उस रात पार्थ भी वहीं पर था, अभिमन्यु ने जवाब दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो आयशा को जानता तक नहीं है। हमें क्रिस्टल से बात करके इस मामले के बारे में अपडेट लेते रहना चाहिए। जो भी हो, आयशा के साथ अच्छा नहीं हुआ, इशिका बोली। जो करना है मैं खुद कर लूंगा। तुम इस मामले से दूर रहोगी और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लोगी। वन मोर थिंग, तुम्हें किस बात का गिल्ट हो रहा है? वो यही डिसर्व करती थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि वो हमारा पीछा कर रही थी, उसके इरादे ठीक नहीं थे। अच्छा हुआ जो वो मर गई, वरना वो तुम्हें और हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता, अभिमन्यु बोला। उसने महसूस किया कि बातों बातों में वो किसी और पर गुस्सा हो रहा था। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और इशिका का हाथ पकड़कर प्यार से कहा, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हमें ऑफिस के लिए भी निकलना है। इशिका ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। वे लोग नाश्ते की टेबल पर वापस आ चुके थे, जहां राधिका और वसुधा पहले से ही मौजूद थीं। भले ही आयशा मर चुकी हो, लेकिन इस वक्त राधिका को आयशा से ज्यादा फिक्र केशव की सता रही थी। वहां आते ही अभिमन्यु ने उनसे कहा, मैंने मामले को संभाल लिया है और हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उम्मीद है कि आप सब भी इस मामले से दूर रहेंगे। मिस निवेदिता, आप ब्रेकफास्ट पैक कर दीजिए, हम गाड़ी में कर लेंगे, ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। अभिमन्यु इशिका का हाथ पकड़कर वहां से निकलने को हुआ, तभी राधिका ने कहा, इशिका काम पर बाद में चली जाना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इशिका वहीं पर रुक गई थी जबकि अभिमन्यु वहां से जा चुका था। वसुधा के कहने पर इशिका ने पहले ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद वो राधिका के साथ उसके कमरे में थी। अब वो लम्हा आ चुका था जब राधिका को इशिका को केशव और उसके रिश्ते की सच्चाई बतानी ही थी, वरना जो चल रहा था उससे चीजें और उलझ जाती।